الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی کے جو لمحات عطا فرمائے ہیں، ان میں ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. اب ہم سب جانتے اور مانتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس وقت ہمارا وقت آخر آ جائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے. کسی کو پتہ نہیں، بیٹھے بیٹھے آدمی چل دیتا ہے، سوتے سوتے چل دیتا ہے، حادثات پیش آتے رہتے ہیں. کسی وقت بھی انسان دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی بنائی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. جیسے ہم کھیتی میں کوئی بیج ڈالتے ہیں، کوئی چیز بوتے ہیں، تو اس بیج کا نتیجہ پھر پیداوار کی شکل میں نمودار ہوتا ہے. کوئی ترکاریاں پیدا ہوتی ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، گندم دانہ اناج پیدا ہوتا ہے. تو دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے لیے کھیتی بنایا ہے، یعنی اس دنیا میں آدمی کو رہنے کے لیے وہ کام کرنے چاہیے کہ جو اس کے لیے آخرت میں فائدہ مند ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو احکام عطا فرمائے ہیں وہ صرف عبادات ہی کے نہیں ہیں کہ بھئی نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ، بلکہ اس میں ہماری بہتری کے لیے معاشرتی احکام بھی ہیں، اخلاقی احکام بھی ہیں، اور اس ایمان کی حفاظت کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے سب سے اہم کام یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے. گناہوں سے بچنا یہ ضروری ہے آخرت کی کامیابی کے لیے. اگر کوئی شخص، فرض کرو، ساری زندگی کوئی نفلی نماز نہ پڑھے، کوئی نفلی صدقہ نہ دے، کوئی نفلی مستحب ذکر نہ کرے مثلا، لیکن ساری زندگی بغیر گناہ کے گزاری ہو، سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ. تو گناہ ایسی چیز ہے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے جنت میں جانے کے لیے. اگر نفلی عبادتیں نہیں کیں، فرائض واجبات پر اتباع کیا اور گناہ کوئی نہیں کیا، تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے. لیکن گناہ ہے جو عبادتوں کو بھی، بعض اوقات عبادتوں کا فائدہ بھی ان کی وجہ سے رک جاتا ہے. لہذا ہر انسان کو اس بات کی فکر چاہیے کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو. قرآن نے فرمایا بذرو ظاہر الاسم بباطنہ، کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطن کے گناہوں کو بھی چھوڑو. کسی وقت انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی عرض کروں گا. لیکن عام طور سے جو گناہ آج کل خاص طور پر ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر گناہ ہوتے ہیں آنکھ کے اور کان کے اور زبان کے. یہ تین اللہ تعالی نے جو ہمیں مشینیں دی ہیں، آنکھیں دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے اور زبان بات کرنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی سرکاری مشینیں ہیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی ہیں. और आप तसव्वुर कीजिए कि कितनी बड़ी नेमत है आंख, कितनी बड़ी नेमत है। इस आंख का ऐसा निजाम अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है कि बचपन से ये मशीन काम कर रही है। और किस तरह कर रही है, इतनी नाजुक है कि जरा सा भी कोई हमला इसके ऊपर हो जाए, हमला तो दरकिनार, जरा सी भी अगर कोई चीज इसको आकर लग जाए तो आदमी बेचैन हो जाता है। और इसमें कितने अल्लाह ने शाखें रखी हैं आंख के अंदर, कि मुझे एक आंख के स्पेशलिस्ट डॉक्टर कह रहे थे कि आंख आंख के सिर्फ आंख के ग्यारह मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन हैं। यानी एक तो होता है ना आंख का स्पेशलिस्ट है कोई, वो आंख के इलाज करता है आंख का, लेकिन आंख के अंदर खुद कोई कर्निया का स्पेशलिस्ट है, कोई पर्दे का स्पेशलिस्ट है, कोई किसी चीज का है, 11 किस्म के इख्तिसास पाए स्पेशलाइजेशन पाए जाते हैं इस आंख के लिए, इसके इलाज के लिए। यह अल्लाह तबारक व तआला ने ये अजीब किस्म की कायनात दे दी है इंसान को, पूरी कायनात है ये। और अगर किसी वक्त ये खराब होने लगे तो इंसान बेचैन भी हो जाता है, और अगर खुदा ना करे उसके अंदर बिनाई में कमी आ गई तो हजार हा लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हो जाता है कि किसी से मेरी ये तकलीफ दूर हो जाए। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने मुफ्त दे रखी है, और इससे हम फायदा उठाते हैं। इस आंख को अगर इंसान इस्तेमाल करे सही तरीके से तो इससे सवाब भी मिलता है। मसलन सही तरीके से इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि जैसे अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखे, आदमी वालिदैन को प्यार से देखे, तो सिर्फ एक बाप को या मां को मोहब्बत की निगाह से देखने पर बाद रिवायात में आता है कि हज और उम्रे का सवाब मिलता है। इस आंख से सही काम लिया कि अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखा, हज और उम्रे का सवाब। इसी आंख को एक शख्स अपनी बीवी को मोहब्बत की निगाह से देखे तो उस पर भी अजर सवाब है। बीवी को अगर मोहब्बत से देखता है, प्यार से देखता है, तो उस पर भी अजर सवाब है। एक रिवायत अगरचे जईफ है लेकिन फजाइल में जईफ अहादीस भी मकबूल हो जाती हैं। यह हदीस एक रिवायत में आया है कि एक जब कोई शख्स अपने बीवी को मोहब्बत की निगाह से देखे और बीवी शौहर को मोहब्बत की निगाह से देखे, अल्लाह ताला दोनों को रहमत की निगाह से देखता है। तो ये बज़ाहिर आदमी बीवी को जो देखता है वो अपने मोहब्बत की वजह से देखता है, अपने ख्वाहिश की वजह से देखता है, लेकिन अल्लाह ताला उस पर भी जो सवाब अदा फरमा रहे हैं। ये इतना बड़ा सवाब मिल रहा है, घड़ी घड़ी सवाब मिल रहा है। वालिदैन को देखते जाओ और सवाब लूटते जाओ, बीवी को मोहब्बत से देखते जाओ सवाब मिलते जाए, सवाब लेते जाओ। किसी बुजुर्ग को इसलिए कि वो अल्लाह का महबूब बंदा है, इस नजर से उसकी जियारत करना, ये सवाब है। किसी आदमी की, किसी अल्लाह वाले की जियारत के लिए जाना, देखने का, भाई उसको मैं इसका चेहरा देख लूं, तो इस चेहरा देखने की वजह क्या है, इसलिए कि ये अल्लाह का मरगुजीदा बंदा है, मैं उसको देखने के लिए इसलिए जा रहा हूं, तो वो सफर भी इबादत और जाकर उस बुजुर्ग को देखना भी इबादत। क्यों? इसलिए कि तुम इसलिए देख रहे हो कि ये अल्लाह का बंदा है और अल्लाह की मोहब्बत की वजह से उसको देख रहे हो, लिहाजा उससे सवाब मिलेगा। अगर कोई अच्छा मंजर सामने है, पहाड़ हैं, दरिया हैं, सब्जा है, बागात हैं, उनको देख रहे हो और इसलिए देख रहे हो कि ये मेरे परवरदिगार की कुदरत का और मेरे परवरदिगार की नेमतों और रहमतों का मजहर है ये, तो इस नियत से देखोगे उसको भी सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। और यही आंख तुम कुरान करीम पढ़ने में इस्तेमाल करोगे उस पर सवाब मिलेगा। अलिफ लाम मीम करके और पढ़ना शुरू कर दिया तुमने आंखों से, तो इसके ऊपर भी सवाब के ढेर लग जाएंगे इंशाल्लाह। और कोई ऐसी किताब का मुताला करते हो इस आंख से जो तुम्हारी रहनुमाई करे, जो तुम्हें सही सबक दे, जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाए, इस नियत से कर रहे हो कि ये मैं इसको पढ़ूंगा तो इस पर अमल करूंगा, इस पर सवाब मिल रहा है। अगर कोई आदमी अपनी हलाल रिज्क हासिल करने के लिए कोई किताब पढ़ता है कि जिससे पता चले कि मैं फलां पेशा इख्तियार करना चाहता हूं, उस पेशे के तरीके क्या होते हैं, इस नियतिया अगर करोगे कि मैं रिज्क हलाल इसके जरिए हासिल करूंगा, इंशाल्लाह उस पर भी सवाब मिलेगा। तो ये सरकारी मशीन है कि जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने तरह तरह से सवाब के वादे किए हुए हैं। और कुछ नहीं, तो अगर सवाब भी ना मिले तो कम से कम अपने जो चीज देखना चाहते हो उस देखने की चीज के लिए अल्लाह तबारा ने ये मशीन अता फरमा रखी है। ये इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने अता फरमाई है, और साथ ही बस ये कह दिया कि चंद चीजों से परहेज करना, चंद चीजें ऐसी हैं कि जिनमें इसको इस्तेमाल ना करना, वो इस्तेमाल करोगे तो गुनाह होगा, और इसका आंख का गलत इस्तेमाल होगा। अल्लाह ने दी है तो फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल भी करना है, अगर उसके हुक्म के खिलाफ इस्तेमाल करोगे तो ये अल्लाह बचाए तुम्हें किसी गुमराही के गड्ढे में ले जाकर डाल देगी। मसलन क्या है कि ये फरमाया कि इस निगाह को किसी गैर महरम इस निगाह से किसी गैर महरम को लज्जत हासिल करने के लिए देखना मना है तुम्हें। कोई गैर महरम, चाहे वो औरत हो, जिंदा औरत हो, या उसकी तस्वीर हो, या उसको लज्जत लेने की नजर से देखना, ये है मना। अब ये एक पाबंदी है सिर्फ कि अपनी निगाह को सही इस्तेमाल करो, किसी नामहरम को लज्जत हासिल करने के लिए मत देखो। अब ये ऐसी चीज है कि जो फरमाया के मत देखो, इसको वजह भी बता दी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने एक हदीस में फरमाया कि अन्नज़रु सहमुन मिन सिहामी इबलीस, कि ये निगाह डालना किसी नामहरम पर लज्जत लेने के लिए ये इबलीस के शैतान के तीरों में से एक तीर है। क्या माना कि जब इंसान इस निगाह को गलत इस्तेमाल करता है और किसी नामहरम को देखता है लज्जत लेने के लिए, तो उसका ये शैतान उसको एक तीर मारता है, उस तीर के जरिए वो उसका शिकार करता है। शिकार करने का मतलब यह है कि फिर वो नजर की हद तक महदूद नहीं रहेगी, उससे आगे चली जाएगी और आगे बढ़ जाएगी। कुछ पता नहीं है कि खुदा ना करे इंसान को वो फहाशी में, उरियानी में, जिनाकारी में मुबतला कर दे, इसलिए रोक डाल दी है। और इसीलिए हदीस में भी फरमाया कि अल ऐनानी तजनियान, आंखें भी जिना करती हैं। जिना, अल्लाह बचाए हर मुसलमान को उससे हिफाजत फरमाए, बड़ी सख्त कुरान करीम में उसके ऊपर बड़ी सख्त बईद है, इन्नहु काना फाहिशतम वसाअ सबीला। लेकिन इस जिना, ये सिर्फ वो आखिरी अमल ही नहीं है بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل عینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. آنکھیں زنا کیسے کرتی ہیں؟ کہ کسی نامحرم کو لذت لینے کی غرض سے دیکھتی ہیں، اور لذت لینے کی غرض سے دیکھنے کے بعد انسان اپنے تصوری تصور میں الاعوذ باللہ وہ گناہ کا تصور کر رہا ہوتا ہے، تو آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. تو یہ آنکھوں کی حفاظت یہ دین کا بڑا اہم شعبہ ہے. اور افسوس ہے کہ آج کل کے معاشرے کے اندر اس کا غلط استعمال اس قدر عام ہو گیا ہے، اس قدر پھیل گیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. پہلے یہ ہوتا تھا، خواتین عام طور سے باپردہ ہوتی تھیں، اور باپردہ ہونے کی وجہ سے خود ان میں بھی شرم و حیا ہوتی تھی، مردوں میں بھی ہوتی تھی، اور مخلوط اجتماعات کا بھی رواج نہیں تھا کہ مرد اور عورت اکٹھے ایک تقریب میں جمع ہیں، تو اس کا بھی رواج نہیں تھا. نتیجہ یہ کہ نظر کی حفاظت ہو جاتی تھی. اب ایک تو فتنہ مغرب کے افکار کے ماتحت یہ پیدا ہوا کہ مسلمان معاشروں میں مخلوط اجتماعات ہونے لگے، مخلوط تقریبات ہونے لگیں، شادی بیاہ ہو رہا ہے اور اس میں مرد عورت دونوں بالکل اس طرح بے محابہ ایک ساتھ جمع ہے، اور خواتین خوب زیب و زیب و زینت کر کے، سنگھار کر کے، اچھے کپڑے پہن کر، اپنے آپ کو دیدہ زیب بنا کر وہ تقریبات میں شامل ہو رہی ہیں، اور ان کی مووی بھی بن رہی ہے اور لوگ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں. تو نگاہ کو گناہ کے طرف دعوت دینے کا سامان پیدا کر دیا گیا. ایک تو یہ مسئلہ. دوسرے عورت جو اس کا اصل مقام تھا اس سے نکل کر سڑکوں پہ آ گئی، دفتروں میں آ گئی، ہر جگہ پہنچ گئی، اس لیے اس کے اندر نگاہ کے غلط استعمال کے امکانات بڑھ گئے. پھر اب تو یہ موبائل، جو آج کل موبائل ہر چھوٹے بڑے آدمی کے پاس موجود ہے، وہ ایسا ہے کہ یہ پہلے کبھی کسی شخص کو کوئی فحش قسم کی تصویریں دیکھنی ہوتی یا فلم دیکھنی ہوتی تو اس کو سینما میں جا کر دیکھا یہ کرتا تھا، سینما میں. لیکن سینما میں ایک اچھا نمازی آدمی جا کے سینما کی لائن میں لگے تو اس کو خود شرم آتی تھی کہ میں جا کے میں سینما کے اندر کیسے لائن میں لگوں اور کس طرح میں سینما میں داخل ہوں، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سینما جیب میں پڑا ہوا ہے، اور اس جیب میں پڑے ہونے کی وجہ سے جب چاہے جو چاہے دیکھ لے. یہ ایک ایسا عذاب ہم پر مسلط ہوا ہے کہ جب چاہے جو چاہے دیکھ لے. فحاشی، اریانی کے بدترین مناظر، فلمیں، یہ سب تمہاری جیب کے اندر پڑی ہوئی ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ اس سے اگر اپنے آپ کو آدمی نہ بچائے تو اللہ بچائے اس نگاہ، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اس سے نگاہیں بھی زنا کرتی ہیں، اور جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، وہ تیر لگ گیا ہے ہمارے معاشرے پر آ کر، اور وہ اس طرح لگ گیا ہے کہ آدمی چاہے نہ چاہے کتنا ہی اہتمام کر لے، لیکن جو موبائل، جو آج کل جس کو کہا جاتا ہے اسمارٹ موبائل، اور اس کو عربی میں آج کل کہتے ہیں الموبائل الزکی، الحاطف الزکی، اس کا نام زکی رکھا ہے، الحاطف الزکی. تو یہ الحاطف الزکی جو ہے، یعنی اسمارٹ موبائل، یہ تو در حقیقت تباہ کن قسم کا موبائل ہے. इसमें बहुत शाज़ो नादिर ऐसा होता है कि आदमी सिर्फ जरूरत की चीज को इस्तेमाल करे और बेजरूरत चीजों को न करे और गुनाहों से अपनी आंखों को बचाए। ये बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही कोई अल्लाह ताला का नेक बंदा हो तो वो इसे महफूज रह सकता है। और आम हो चुका है, बच्चे बच्चे के हाथ में है, बच्चे बच्चे के हाथ में है। और बचपन के अंदर, ये बचपन के अंदर से ही उसको इस किस्म के मनाजिर नजर आते हैं। तो भाइयों, मेरी गुजारिश यह है कि आंख की हिफाजत, ये दीन का एक बहुत अजीम शोबा है, और अपने आप को इससे बचाना और आंख को गुनाह से बचाकर सबाब की तरफ ले जाना। उसमें मोबाइल के अंदर बाज़ात कोई अच्छी चीजें भी आती हैं, आदमी उस हद तक इक्तफा कर ले, जिसके पास मोबाइल है वो उस हद तक इक्तफा कर ले, उसमें बाद चीजें अच्छी भी आती हैं, बाद लोगों की नसीहतें भी आती हैं, बयानात भी आते हैं, वो उस हद तक अगर आपने महदूद रख लिया अपने आप को तो इंशाल्लाह निगाह की हिफाजत हो गई। लेकिन जो उसके जो शाखसाने मोबाइल के जो शाखसाने फैले हुए हैं, वो शाखसाने उनसे अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करो। अगर उसको किसी तरह ब्लॉक किया जा सकता हो तो उसको ब्लॉक कर दो, खास तौर से बच्चों के लिए, बच्चों के हाथ में अगर मोबाइल है तो उसको ब्लॉक करके रखा जाए, और न हो तो कम से कम अपने ऊपर जबरदस्ती करके, हिम्मत करके अपने आप को उन चीजों से महफूज रखने की पूरी कोशिश करो। पूरा मुआशरा इस वक्त इस अजीम फितने का शिकार है, तो खूब समझ लो कि निगाह ऐसी चीज है जो जन्नत में भी पहुंचा सकती है और ऐसी चीज है जो जहन्नम में भी ले जा सकती है। इस निगाह का सही इस्तेमाल करो, जैसे मैंने शुरू में इशारे किए, तो उसको उस हद तक महदूद रखो जो जायज काम है, गुनाहों से बचने की कोशिश करें। तो मैंने अर्ज किया कि आज हमारे मुआशरे में निगाह का फितना, कान का फितना, जबान का फितना, ये तीन जबरदस्त फितने हैं जो हमारे इस दौर में कसरत से फैले हुए हैं, जो हमें गुनाहों में लथपथ कर रहे हैं। उससे किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश करना हर मुसलमान के जिम्मे फर्ज है। ये बात कान में मैंने डाल दी, और इसलिए डाल दी कि इसकी अहमियत दिल में पैदा हो, और ये ना समझो कि हमारे हाथ में खिलौना आ गया है और वो खिलौना जिस तरह चाहे हम उसको इस्तेमाल करें, जिस तरह चाहे हम उसके उससे लज्जत लें, जिस तरह हम उससे मजे उड़ाएं। ये मजे जो है ये सब भूल जाओगे आखिर में जब पहुंचोगे। मल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये जब वहां पर पहुंचेंगे, कुरान में आता है कि जब इंसान वहां पहुंचेगा आखिरत में, तो सारी दुनिया की पूरी जिंदगी उसको ऐसे लगेगी कि जैसे चंद घंटों में गुजर गई। बस ये पता चलेगा पूरी जिंदगी जो है वो एक शाम थी एक सुबह थी, बस असल जिंदगी जब आएगी सामने। तो इस छोटी सी जिंदगी के लिए अपने आप को तबाह करना, अपनी आंखों को तबाह करना, अपने दिल को तबाह करना, अपने अंजाम को खराब करना, ये इंतहा दर्जे की बेवकूफी है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से हमें इस बेवकूफी से नजात अता फरमाए और हिफाजत। और दुआ भी किया करो, दुआ भी किया करो, या अल्लाह मैं फितने के जमाने में जिंदगी गुजार रहा हूं, चारों तरफ फितने ही फितने हैं, और मैं अपनी आंख को सही रास्ते पर रखना चाहता हूं, लेकिन चारों तरफ निगाहों के लिए ये तीर चल रहे हैं, इबलीस के तीर चल रहे हैं, या अल्लाह मुझे अपने रहमत से मुझे बचा ले। ये दुआ करो, हर रोज दुआ करो, या अल्लाह मैं आपके बारगाह में हाजिर हूं तो मेरे 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 नामे आमाल में ये निगाह के गुनाह ना हो, कुरान के कान के गुनाह ना हो, जबान के गुनाह ना हो। मांगा करो अल्लाह तबारक व तआला से, तो मांगोगे जो अल्लाह ताला को कोई दुश्मनी तो नहीं है हमसे। जब अगर बाकी ये बात समझ में आ गई कि गलत निगाह को गलत इस्तेमाल करना बहुत बड़ी तबाही है, तो इस तबाही से बचते कि अल्लाह ही से मांगो और मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, थको नहीं। जब मांगते रहोगे, मांगते रहोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला इंशाल्लाह एक दिन निजात दे देंगे। अल्लाह ताला हम सबको इससे निजात अदा फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।